जिस प्रकार से सनातन धर्म में अवतारवाद को स्वीकार किया है, ऐसे ही गुरमत में भी अवतारवाद को माना गया है। क्योंकि गुरमत में भी आया है, सतयुग तय मानियो छलियो बल बावन भाइयो, त्रेतय तय मानियो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्र सैन कौ राज अभय भक्तय जन दियो, कलयुग प्रमाण नानक गुरु अंगद अमर कहायो। तो अवतार उसे कहते हैं जो प्रभु परमात्मा स्वयं, जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, इस धरती पर जब पाप का बोझ बढ़ जाता है, पृथ्वी पाप के बोझ को सहार नहीं सकती, तो ये पृथ्वी के जीव पुकार करते हैं ईश्वर के आगे कि हे सच्चे पातशाह, अब आप ही मुझे बचा सकते हो और इस संसार में कोई बचाने वाला मुझे नहीं है। तो आप अकाल पुरुष निर्गुण निराकार परमात्मा जो है उस सगुण रूप में प्रकट होते हैं। अवतार जो है, अवतार का जन्म नहीं होता है, वो प्रकट होते हैं और जिस प्रयोजन से आते हैं उनका प्रयोजन यही होता है कि इस संसार में जो पाप बढ़ रहा है उस पाप को समाप्त करके धर्म की स्थापना करने, लोगों को धर्म का मार्ग बताने के लिए। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे। भगवान कृष्ण कह रहे हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ जाते हैं, तो इस धरती पर मैं प्रकट लेता हूँ, आता हूँ और सज्जन पुरुषों को बचाता हूँ और दुष्ट पुरुषों को संहार करता हूँ। अवतार का भाव ये होता है कि निर्गुण निराकार परमात्मा ही सगुण रूप से इस धरती पर प्रकट होते हैं और हर एक समय में अलग अलग कला लेके आते हैं, अलग अलग शक्तियां लेके आते हैं। तो जिस व्यक्ति को जिस अवतार के ऊपर जैसी भावना होती है वो वैसा उसको मानते हैं। जैसे सिक्खी में साहेब गुरु नानक देव जी को जो है ना पूरन अवतार कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि और मत वाले भी उसको पूरन अवतार माने। जैसे सनातन धर्म वाले कृष्ण को पूर्ण अवतार मानते हैं, समझे ना, राम को 14 करा के अवतार मानते हैं, इसी तरह से और महापुरुषों के अलग अलग अवतार मानते हैं, समझे ना, समझ गए। परशुराम को मानते हैं कि वो कुछ कला लेके आए, और अवतार कुछ कला लेके, कला नाम शक्तियाँ का है, समझे कि नहीं। लेकिन जो भी इस धरती पर प्रकट हुए हैं उनका कोई प्रयोजन लेके आए और वो प्रयोजन पूरा हो गया, उद्देश्य पूरा हो गया, वो चले गए। एक अवतार का दूसरे अवतार से कभी तुलना नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि वो समझे।
यदि यदि हम कोई व्यक्ति तुलना करता है तो वो तुलना हो नहीं सकती, लेकिन एक ही प्रभु परमात्मा जो है अलग अलग समय में अलग अलग प्रयोजन को लेकर के आते हैं और अपना उद्देश्य पूरा करके वो चले जाते हैं, समझ गए क्या?
जो
एक जैसे एक ही मनुष्य कभी राम का ड्रामा में राम का पाठ करता है, है जी, तो वो सीता की खोज के लिए जाता है और तरह तरह की जिस तरह से वो राम लीला किए हैं वैसा करता है, लेकिन वही राम जो है वही व्यक्ति को यदि रावण का पाठ दिया जाए है? तो सेम व्यक्ति जो है वो सीता को उठा के ले जाएगा और सीता से कहेगा तो मेरी पत्नी बन जाए कर। तो एक ही व्यक्ति जो है एक समय में जब रावण का पाठ किया तो रावण जैसा रोल करेगा, और जब राम का पाठ करेगा तो वो जो है सो जिस प्रकार से राम की जिंदगी थी, राम इस संसार में आ करके अपनी लीला को बरताए हैं, वैसा करेगा। तो लेकिन वो आदमी ना तो राम है और ना तो रावण है, वो राम और रावण से अलग न्यूट्रल है। इसी तरह से एक ओंकार जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, वो कोई अवतार नहीं है, वो अवतारों से भिन्न है, समझे ना, अवतारों से बियॉन्ड है वो। लेकिन वही निर्गुण निराकार परमात्मा इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म को नाश करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग रूप में आते हैं।
जो जो कला फर्क है, जैसे 14 कला 16 कला, हाँ,
शक्तियां हैं,
ये शक्तियां हैं,
ये शक्तियां हैं।
इतना फर्क किस लिए है? क्योंकि जरूरत के मुताबिक,
समय के अनुसार, समय के अनुसार। अब जैसे एक ड्रामा है, एक ड्रामा में कोई राम का पाठ अदा कर रहा है और कोई कोई आदमी राम का पाठ अदा कर रहा है, कोई रावण का पाठ अदा कर रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो रावण का पाठ अदा कर रहा है वो दुष्ट है और जो राम का पाठ अदा कर रहा है वो सज्जन है। उसको वही पाठ मिला है, समझे कि नहीं। वो पाठ अदा करने के बाद दोनों बैठ के चाय पीते हैं, मस्ती लेते हैं और कहते हैं कि हमारे पार्ट से पब्लिक बहुत खुश हुआ, चाहे क्या, दोनों सेम है ना, आपस में कोई विरोध नहीं है। लेकिन ड्रामा के टाइम में जो है एक दूसरे के ऊपर तीर चलाते हैं, ये सब कुछ करते हैं। इसी तरह से इस धरती पर निर्गुण निराकार परमात्मा जो है ना, वो पार्ट अदा करने के लिए आते हैं, जो उनको अकाल पुरुष की आज्ञा होती है। जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज स्वयं कह रहे हैं, भाई आज्ञा अकाल पुरुष की, अकाल जो निर्गुण निराकार परमात्मा, उसकी आज्ञा हुई और उसकी आज्ञा से मैं इस धरती पर आया और आ करके जो भी उन्होंने रोल अदा करना था रोल अदा करके चले गए।
अब अवतारों के शरीर होते हैं।
अब जैसे देखो, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं और गुरु तेग बहादुर जी हैं। गुरु तेग बहादुर जी को कह रहे हैं कि जी आप या तो मुसलमान इस्लाम स्वीकार करो वरना आपकी गर्दन काटी जाएगी, शीश देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी महाराज वचन को नहीं माने, धर्म की रक्षा के लिए, और हंसते हंसते अपना सिर दे दिए, सिर शीश दिया पर सिर न दी, है ना जी। उन्होंने लड़ाई नहीं किए, लेकिन ठीक उल्टा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक मिनट भी किसी के अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और उसका पूरा मुकाबला तलवार से दे रहे हैं। इसी तरह से साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज हैं, उनको जो तत्ती तवी पर बैठाया जा रहा है, तत्ती तवी पर बैठ रहे हैं, है जी, ऊपर रेता डल रहा है, रेता डलवा रहे हैं। लेकिन ठीक उनके अगले गुरु जो हैं साहेब श्री गुरु हरगोविंद सिंह साहेब जी महाराज, वो एक मिनट अन्याय बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वो पूरा जो है अपना खंडे के धार पर उनको मुकाबला कर रहे हैं। तो देखा जाए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और गुरु तेग बहादुर जी महाराज दोनों एक हैं, ना कोई बड़े हैं ना कोई छोटे हैं, लेकिन जो कला, जो शक्तियाँ, जो उनको भेजा है अकाल पुरुष ने कि ये करके तुमने आना है। क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी जब वो नदी में प्रवेश करने, सारा शरीर लहू छाले छाले पड़ गया उनके शरीर को, है जी, तो वो उनका ये नियत खराब था कि इनको जो है ना सो पशु के चमड़ी में इनको डाल करके और सीधे और बड़ा और मतलब तस्ह देना था। तो वहाँ पर जो है साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं हमने स्नान करना है। स्नान करने के बहाने ये भरताना अपने चेलों को आ जाओ को है जगह। तो साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जो है वहाँ पर सारे लोगों अपने जो उनके सिख थे साथ में विधि चंद वगैरह जो भी लोग थे, तो उनको ये कहते हैं कि भाई अब जो है सो समा आ गया है, जो हमारा काम करना था वो हो चुका है, अब इस शरीर को त्याग करके हमें जाने का समय आ गया है। ये सिखों को, 5 गुरसिखों को साहेब गुरु अर्जन देव जी महाराज बोले हैं, समझे। तो मेरा कहने का भाव ये है कि एक अवतार का दूसरे अवतार से कभी भी जो है ना सो मुकाबला या तुलना नहीं करनी चाहिए। ये तुलना करना ही अज्ञानता है, क्योंकि अकाल पुरुष ने जिस जिनको जिस रूप में भेजा है कि वो करने के लिए वो करने।
हाँ। जो अवतार के जो तत्व होते हैं, जो आम इंसान के तत्व से फर्क है,
जो आम व्यक्ति है वो अपने कर्मों के बंधा हुआ, क्योंकि वो पूर्व जन्म में मुक्त नहीं हुआ है। क्योंकि जब भी ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद जन्म मरण समाप्त हो जाता है, क्योंकि वेद में मंत्र है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिसने आत्मा का बोध कर लिया या परमात्मा का दर्शन कर लिया, उसके सारे कर्म जल जाते हैं और सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं और वह व्यक्ति वाहेगुरु के साथ अभेद हो जाता है, उसका नेक्स्ट जन्म नहीं होता। समझ गए ना? तो ये जो आम व्यक्ति है वो पूर्व जन्म में मुक्त नहीं हुआ है, तो वो जन्म धारण किया है। समझ गए कि नहीं? अपने कर्मों के अनुसार, कर्मों के बंधे हुए इस संसार में आया है वो, और फिर जा करके कर्मों के अनुसार वो सुख पा रहा है, दुख पा रहा है। और यदि किसी महापुरुष का संग होता है तो उनके द्वारा भक्ति करके, सत्संग करके अपनी आत्मा की अनुभूति करता है और वो मुक्त होता है। लेकिन जो अवतार हैं, अवतार वो शुरू से मुक्त होते हैं, उनको यहाँ पर आ करके सत्संग सुनने की जरूरत नहीं है, हैं? और वहाँ उनको जो है सो वो अपने कर्मों के बंधे हुए यहाँ नहीं आए हैं, और ना कर्मों के बंधे हुए उन्होंने जाना है। यदि वो किसी को गुरु बनाते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो उनका प्रयोजन हमको शिक्षा देने के लिए होता है। जैसे जैसे भगवान राम, समझे ना, जैसे भगवान राम वशिष्ठ जी को गुरु बनाते हैं, उनसे पूछते हैं, हैं? वो तीर्थ यात्रा को जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जा करके उनको वैराग्य पैदा होता है और फिर कहते हैं गुरुदेव मुझे सारा संसार अच्छा नहीं लगता है। फिर वहाँ पर जो है सो उनको उपदेश करते हैं वशिष्ठ जी। तो ये वशिष्ठ जी को उपदेश करना और राम जी को वैराग्य होना, ये सारा हमको शिक्षा देने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए वो एक परमात्मा लीला करते हैं। इसी तरह से कृष्ण जो है वो भी लीला किए कि संदीपनी के ऋषि के पास गए और छोटे बालक के रूप में जाके लकड़ियां लाते हैं, सुदामा के साथ दोस्ती करते हैं और आकर के सारा कुछ जो किए हैं वो हमको शिक्षा देने के लिए वो लीला किए हैं। ना तो उनको अपने ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता थी और ना कोई पूरी स्वयं को ज्ञान की कोई उनको आवश्यकता नहीं, वो हमको शिक्षा देने के लिए। लेकिन बहुत से लोग जी ये अवतार बड़े थे, ये अवतार छोटे हैं, ये हैं, तो यदि हम ऐसे तुलना करें तो ये अज्ञानता है। अब साहेब गुरु नानक देव जी महाराज काफ़ी समय तक जिए, गुरु हरकिशन साहेब जी महाराज बहुत थोड़े समय तक जिए, है जी, वो उतना ही लीला करना था। तो हम कहें कि गुरु हरकिशन साहेब जी छोटे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बड़े हैं, गुरु नानक देव जी बड़े हैं, ये छोटे हैं, गुरु हर राय साहब छोटे हैं बड़े, तो ये छोटे बड़े नहीं हैं। हमारे दसों गुरु साहिबान जो हैं सो एक ही हैं, लेकिन वो जो अकाल पुरुष ने जिनको जितना मतलब इस संसार में जिस काम के लिए भेजे वो काम करके वो चले गए। समझे?
जो उनका तत्व है,
उद्देश्य वो पूरा करके चले।
शरीर का तत्व है वो डिफरेंट।
शरीर का धारण करना सिर्फ क्योंकि हम शरीरधारी हैं, आम जीव शरीरधारी हैं, आम शरीरधारी को उपदेश करने के लिए इसी प्रकार से शरीरधारी आकर के ही उपदेश दिया जा सकता है। समझे ना? वो अपने जीवन में करके दिखाएंगे तो उससे आम पब्लिक को प्रेरणा मिलता है और फिर जा करके वैसा जीवन जीते हैं। ये हम जो है अवतार का उद्देश्य होता है।
जो प्रकट होते हैं अवतार, वो माँ की कुख में किस तरह प्रवेश करते हैं?
हाँ, उसका ऐसा है, प्रकट होते हैं वैसा ही मैं बता रहा हूँ। जो आम व्यक्ति है वो माता के गर्भ में जो है वो अपने कर्मों के अनुसार माता के गर्भ में जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई आदमी पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किया है, समझ गए ना, तो वो किसी अच्छी धर्मात्मा माँ के गर्भ में जाता है, वो समझ गए ना, और फिर वो जन्म धारण करके शुरू से उसको सत्संग मिलता है, और सत्संग करके फिर वो जैसे आगे कर्म करेगा उसके अनुसार मोक्ष मिलेगा या फिर अगला जन्म होगा। इसी तरह से पूर्व जन्म में जिसे जैसे किसी ने बहुत पाप किया है तो उसकी जो है सो जीवात्मा को ऐसे दुष्ट माँ की खोज होती है कि उसके गर्भ में जाए, वैसा वातावरण के शुरू से उसको वातावरण अच्छा नहीं मिलता और ऐसे गर्भ में वो पलता है बच्चा। आम आदमी जो है जो जिसने जिसका पुण्य और पाप करीब करीब बैलेंस जैसा है वो तुरंत मरता है और तुरंत उसको जन्म मिल जाता है। लेकिन अवतार जो हैं, अवतार इस धरती पर जो प्रकट होते हैं वो तो निश्चित है कि वो माँ जो है सो वो गर्भ में हमें आता हुआ दिखता है, लेकिन वो वास्तविक में वो अजूनी है, समझे। आम व्यक्ति को वो लगता है कि वो गर्भ में आए हैं, लेकिन उनका गर्भ में आना फिर पैदा होना और वो सारा कुछ एक आम मनुष्य की तरह जो है लीला करना, ये हमको दिखाने के लिए है, समझे। अब देखो साहेब गुरु नानक देव जी महाराज भी पैदा हुए गर्भ में आए, दिखता है, लेकिन वास्तविक में गर्भ में नहीं आए वो। अब दौलता दाई जो है सो पहला दीदार करती है, यहाँ आपका लड़का हुआ है खुशियाँ मनाओ ये करो, तो वो पैदा होना और खुशियाँ मना के लड़का हुआ ये आम लोगों के लिए है, समझे ना। लेकिन जो साहेब गुरु नानक देव जी महाराज हैं वो इस धरती पर प्रकट होना ये एक हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, वो जूनी में नहीं आए।
जो अवतार होते हैं वो शुद्ध सतोगुण से पैदाश होती है उनकी,
ऐसा है कि वो तीनों गुणों से ऊपर होते हैं, समझे कि नहीं। लेकिन ज्ञान जो है वो ज्ञान में सतोगुण ज्यादा होता है, रजोगुण तमोगुण कम होता है। एक चीज और याद रखना जो आपको आम ग्रंथों में नहीं मिलेगा, जो अवतार होते हैं वो माया को स्वीकार करके आते हैं, और आम जीव जो होता है वो अविद्या के अधीन होता है, समझ गए ना। तो अविद्या जो है, अविद्या में रजोगुण तमोगुण ज़्यादा होता है और सतोगुण कम होता है, और माया में सतोगुण ज़्यादा होता है और रजोगुण तमोगुण कम होता है। एक दूसरी चीज क्या है कि अविद्या एक देश में होता है, एक थोड़े से दायरे में होता है, लेकिन माया जो है वो सर्वत्र फैला होता है।
जो सगुण माया का प्रपंच एक ही होता है।
हाँ, नहीं ऐसा है, जैसे एक दरख्त को हम दरख्त कहते हैं और जहाँ पर लाखों दरख्त हो उसको जंगल कहते हैं, कहते हैं ना। इसी तरह से एक जो शरीर बना है ये इसका कारण शरीर अविद्या है, और पूरा ब्रह्मांड का जो शरीर है, पूरा जो ब्रह्मांड है विराट जो है उसका कारण शरीर जो है सो माया है, समझ गए ना। तो अवतार का जो शरीर होता है वो माया निर्मित होता है, और जीव का जो शरीर होता है वो अविद्या निर्मित होता है। यही कारण होता है कि अवतार चाहे तो एक साथ जो है हजारों शरीर बना लें एक एट ए टाइम, वो हजारों शरीर बना ले क्योंकि उसकी उपाधि माया है, और जीव हजारों शरीर नहीं बना सकता क्योंकि उसकी उपाधि अविद्या है। लेकिन जीव भी साधना के द्वारा योग के द्वारा जब शुद्ध सत्वगुण बहुत बढ़ जाता है तो उसके अंदर भी काफी क्षमता आ जाती है कि योगी लोग कई एक शरीर धारण कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अवतार जैसा नहीं।
अवतार तो अवतार,
समझ गए ना, ये थोड़ा सा अंतर है। तो आप देखना जैसे भगवान राम 14 वर्ष वनवास करने के बाद आए, समझे ना, जब आए वहां पर अयोध्या तो हर एक स्त्रियां हर एक आदमी के मन में ये जिज्ञासा था कि जिस तरह से तीनों माताएं राम के साथ गले लगेंगे, तो हर एक चाहते थे कि राम हमारे साथ गले लगे, समझे कि नहीं, हर एक के मन में ये उत्साह था। तो भगवान राम ने लोगों की भावना को देख करके एट ए टाइम उन्होंने हजारों शरीर धारण कर लिए और हर एक के साथ गले लग रहे हैं, और हर एक को क्या नजर आ रहा है कि राम हमारे साथ गले लगे हैं। दूसरा कह रहा है राम हमारे साथ गले लगे हैं, तीसरा कह रहा है राम हमारे साथ गले रहे, उसको ये नहीं दिख रहा है कि वो राम और के साथ भी गले लग रहे हैं, समझेंगे कि नहीं, समझे ना। वो एट ए टाइम उन्होंने हजारों शरीर धारण कर लिए और सारे के साथ गले लगे,
जैसे कृष्ण महाराज ने अर्जुन अर्जुन को विराट
स्वरूप दिखाए ना, इसी तरह से गोपियों को भी ना भगवान जो है वो जो कितने हजार रानियां थी उनको हर एक को लगता था कि हमको ज्यादा प्रेम करते हैं, समझे कि नहीं, लेकिन भगवान ने तो किसी को विशेष नहीं, किसी को कम नहीं, वो तो सबको समान करते हैं। और एट ए टाइम सारी गोपियां कहती थी वो कृष्ण हमारे हैं, वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ गले लग रहे हैं। दूसरी गोपी भी कहती थी, वो भी कहती थी। तो ये माया में जो अवतार है उसकी उपाधि जो है माया होती है, और जीव की उपाधि अविद्या होता है, ये मुख्य अंतर है, समझे ना। ये वेदांत के ग्रंथों में मिलेगा और किसी ग्रंथों में आपको नहीं मिलेगा, विशेष बनता है।